श्रोताओं नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पत्रस की पहली पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है दुखों के मध्य आशा। श्रोताओ, हमें उम्मीद है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हो प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए सपरिवार अपने मित्रों के साथ कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में फिर से स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और उनके साथ जो भी प्रिय बैठे हैं, आप सबका भी स्वागत करता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पहला पत्रस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, कसकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने पर तुम्हें मिलने वाला है। और हमने यह भी देखा आगे कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं से नहीं, पर निर्दोष एवं निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। मेरे प्रियो, हमने इन सारी बातों को देखा है और तब हमने यह भी देखा कि उसका ज्ञान जो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था, अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। उसे परमेश्वर ने जिलाया कि हमारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। तो हम इससे पहले कि आज अपने अध्ययन में और आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप प्रतिदिन हमें नए रीति से अपनी निकटता में आने का अवसर प्रदान करते हैं। इस समय जब हम आपके वचन में से फिर से सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी विनती है कि हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय अलग अलग स्थानों पर रेडियो के साथ आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए। पवित्र आत्मा, आप उन्हें सहायता कीजिए ताकि आपके वचन को वे समझ सकें। आप उनसे बोलिए और बातचीत कीजिए। हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो इस समय अपने जीवन से निराश हैं, बीमार अवस्था में हैं, पारिवारिक समस्याओं में हैं, आर्थिक समस्याओं में हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं और अपने जीवन में संतान की इच्छा रखते हैं। पिताजी, आप उन सब पर कृपा दृष्टि कीजिए, उनके जीवन की आशाओं को आप पूरा कर दीजिए। अपने वचन के द्वारा आप हम सब से बोलिए और बातचीत कीजिए। इस समय फिर से बार हम में से प्रत्येक को आपके हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, मैं पिछले कुछ पदों को आपके लिए दोहराना चाहता हूं जो इस अध्ययन में नहीं थे वे भी इस बातों को समझ सकें। हम देखते हैं कि पहला पत्रस एक अध्याय उसके 17 पद में वह कहता है, और जब कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। यहां पर कहता है बिना पक्षपात। परमेश्वर हर एक का काम बिना पक्षपात के देखता है। परमेश्वर के लिए कोई भी चमचागिरी नहीं कर सकता है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि वह किसी को पक्षपात की दृष्टि से नहीं देखता है। परमेश्वर सबका न्याय बिना पक्षपात के करेगा। इसका आपके उद्धार से कोई भी संबंध नहीं है या आपके सांसारिक जीवन से संबंधित है। परमेश्वर के न्याय का भय हमें दीन बनाए और हमारे जीवन के प्रति अधिक सतर्क करे। मेरे मित्रों, सुनिश्चित करें कि हम दिखावा ना करें। क्या आपके चेहरे से हर जगह मुस्कान और ज्योति प्रसारण होता है? सुसमाचार मरी हुई घास पर गुलाब जल नहीं है जो छिड़कने से फिर से ताजा हो जाए। सुसमाचार जीवन बदल देता है और जीवित आशा लाता है, आपके जीवन में भी ला सकता है, जो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर आधारित होती है। विश्वासियों को परमेश्वर की दाहिनी ओर उपस्थित जीवित उद्धारकर्ता से जीवन प्राप्त होता है। पहला पत्रस एक अध्याय उसके 18 और 19 पद में हम आगे इस प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। लिखा है क्योंकि तुम जानते हो। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप जानते हैं कि आपका उद्धार हो गया है। आप यह भी जानते हैं कि आपका उद्धार नहीं हुआ है। इन पदों में पत्रस आपके उद्धार के निमित्त परमेश्वर के कार्य की चर्चा करता है। यह आपकी मुक्ति है, उसने आपके लिए कीमत चुकाई है। हम परमेश्वर के दंड के भागी थे। यहेजकेल नबी की पुस्तक 18 अध्याय के 4 पद में वह कहता है, जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। परमेश्वर का यह आदेश बदला नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। वह कल, आज और सदा एक सा ही रहता है। यदि पाप परमेश्वर की अपरिवर्तनीयता पर ध्यान दे तो परमेश्वर उसके लिए भय का कारण है। आज हम सुनते हैं कि हम नए युग में हैं, नए विचारों में और नए सदाचारों में वास करते हैं, परंतु परमेश्वर नहीं बदला है। उससे बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह आदि और अनंत का ज्ञान रखता है। वह न तो समाचार पत्र पढ़कर और न ही टीवी पर समाचार सुनकर बदलता है। उसके लिए कोई भी जानकारी नई नहीं है, क्योंकि वह पूर्व काल, वर्तमान काल और भविष्य का संपूर्ण ज्ञान रखता है। परमेश्वर ने अपने आदेश भी नहीं बदले हैं। जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। तब वह आगे कहता है, तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ है। सोना चांदी कितना भी शुद्ध किया जाए, जी हां, नाश तो होगा ही। हमारा छुटकारा नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ है, परंतु बहुमूल्य लहू से हुआ है। लिखा है, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है। जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वह प्रभु यीशु से रहित है, उसके उद्धार से रहित है। उद्धार रहित जीवन से अधिक अर्थहीन और कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर प्रत्येक पशु, प्रत्येक पेड़ पौधा एक उद्देश्य की पूर्ति करता है। आकाश में सूर्य, चांद और हर एक सितारा एक उद्देश्य की पूर्ति करता है, परंतु परमेश्वर के बिना मनुष्य अर्थहीन है। किसी ने कहा है कि मनुष्य इस ग्रह की त्वचा पर एक दाने के समान है। परमेश्वर के बिना मनुष्य ऐसा ही है। हम इस जीवन की किसी भी नाशवान वस्तु के द्वारा छुटकारा पाए हुए नहीं है। मनुष्य के पास अपने उद्धार के बदले परमेश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे मित्रों, आपके पास ऐसा क्या है जिसकी परमेश्वर को आवश्यकता है? क्या आप उसे कुछ भेंट देकर अपने लिए उद्धार मोल ले सकते हैं? क्या कुछ कार्य करके, परिश्रम करके उसके लिए उद्धार मोल ले सकते हैं? परमेश्वर ने मुझ पर एक दिन प्रकट किया कि मैं कैसा महत्वहीन मनुष्य हूं। जब उसने मुझे पीलिया के रोग से ग्रसित किया, उस दिन मुझे बाइबल अध्ययन लेना था जो मेरे लिए महत्वपूर्ण था, परंतु परमेश्वर ने कहा, सुन, मैं तेरे आने से पूर्व भी तेरे बिना काम चला रहा था और तेरे बाद भी मेरा काम चलता रहेगा। तू सोचता है कि सभा में प्रचार करना महत्वपूर्ण है, परंतु मैं तुझे सिखाना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण क्या है। मैं चाहता हूं कि तू यहां लेटकर मुझे निहारे और मेरे साथ अपने संबंध को सबसे अधिक महत्वपूर्ण जाने। जी हां, वह कहता है, मैं तुझे कुछ बातें सिखाना चाहता हूं। तू कभी कभी मेरे वचन को अपने वास्तविक जीवन से बहुत दूर ले जाता है। मैं चाहता हूं कि तुझे मेरे वचन की सच्चाई का बोध हो और थोड़ा सा कष्ट तुझे नाश नहीं करेगा, वह तुझे मेरी इच्छा के अनुरूप बनाएगा। मेरे प्रियो, मैंने सीखा कि मेरे पास परमेश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि आप भी सोच रहे हैं कि आपके पास कुछ है जिसे आप परमेश्वर को देंगे और वह आपको इसके बदले में उद्धार देगा। मेरे प्रियो, आप गलत हैं, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। हम अपने उद्धार के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो हमारा उद्धार कैसे होगा? मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। यहां फिर से पत्रस कहता है कि प्रभु यीशु का लहू बहुमूल्य है। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि कुछ धार्मिक समूहों में प्रभु यीशु के लहू की चर्चा नहीं होती है। अनेक कलीसियाओं में तो प्रभु यीशु के लहू से संबंधित गीत ही हटा दिए गए हैं। उनके तर्क में लहू की बातें पुरानी हैं। मैं नहीं मानता हूं और पत्रस भी नहीं मानता है, और वह कहता है यह लहू अब तुम्हारा पुराना लहू है, ऐसा नहीं कहता है। वह कहता है कि प्रभु यीशु का लहू बहुमूल्य है। आगे वह कहता है, निर्दोष और निष्कलंक मेमने, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। मेरे प्रियो, पत्रस 3 वर्ष प्रभु यीशु के साथ रहा था, और वह कहता है कि प्रभु यीशु निर्दोष और निष्कलंक है। वह पाप रहित था। वह निश्चय ही आज के विद्वानों से अधिक मान्य न्यायी है। ये लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु भी एक सामान्य पापी मनुष्य था। वे तो पैसा कमाने के लिए उलटफेर की बातें लिखते हैं। पत्रस पैसा बनाने के लिए नहीं निकला था। उसे तो प्रभु यीशु के कारण कष्ट और क्रूस की मृत्यु मिली थी। वह कहता है कि हमारा उद्धार नाशवान सोने चांदी से नहीं, प्रभु यीशु के बहुमूल्य लहू से हुआ है। जी हां, निर्दोष और निष्कलंक मेमने के बहुमूल्य लहू से परमेश्वर ने हमारे लिए यह किया है। यह एक सिद्ध कथन है। पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, उसका ज्ञान जो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था। प्रभु यीशु तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही जाना गया था। स्कोफील्ड बाइबल में इस प्रकार से अनुवाद किया गया है, पूर्वाभिषेक, चुनाव और पूर्व नियति में परमेश्वर की प्रभुता संपन्न इच्छा तार्किक रूप से उसके सब संभावित कार्यों के अनंत सर्व ज्ञान से उत्पन्न थी। अतः समय के आधार पर नहीं, तर्क के आधार पर क्रम इस प्रकार है, सर्वज्ञान, ईश्वरीय निर्णय, पूर्वाभिषेक, चुनाव और पूर्व नियति तथा पूर्व ज्ञान। मेरे प्रियो, जिस प्रकार परमेश्वर का निर्णय अनादि है, उसी प्रकार उसका पूर्व ज्ञान भी अनादि है। उसका पूर्व ज्ञान सब घटनाओं का है, तो वह उन सब को समाहित करता है जो चुनाव में, पूर्व ज्ञान में और पूर्व नियति में हैं। अतः उसका चुनाव उसके पूर्व ज्ञान और उसका पूर्व ज्ञान उसके चुनाव के अनुसार है, अर्थात वे दोनों पूर्ण सामंजस्य में हैं। जब हम पूर्वाभिषेक, चुनाव, पूर्व नियति, पूर्व ज्ञान आदि शब्दों के विषय में चर्चा करते हैं, तो मेरे विचार में हम अपनी सीमित बुद्धि से परमेश्वर को एक विशाल कंप्यूटर समझते हैं, परंतु वह कंप्यूटर नहीं है। उसका हृदय संपूर्ण ब्रह्मांड से बड़ा है। बाइबल अध्ययन के शिक्षा लेते समय, अध्ययन करते समय हमें यह जानना अनिवार्य हुआ कि परमेश्वर का पूर्व ज्ञान उसके पूर्वाभिषेक से पूर्व आता है या नहीं। परंतु सच कहूं तो उस समय ही से मुझे चिंता नहीं है कि क्या पहले आता है। अब मुझे यह समझ में आ गया है कि प्रभु यीशु का ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। प्रभु यीशु जगत की नींव पड़ने से पहले वध किया हुआ मेमना था, क्योंकि परमेश्वर पहले से ही जानता था कि हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। मुझे किसी कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, मुझे एक प्रेमी परमेश्वर की आवश्यकता थी जो अपने अनुग्रह से उद्धार उपलब्ध कराता है, और उसने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि उद्धारकर्ता दे दिया। हमारे पापों की क्षमा के लिए उसने लहू देकर मूल्य चुकाया, ताकि हम उद्धार बिना कुछ दिए ही प्राप्त करें। मेरे मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं, पहला पत्रस एक अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी, कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। ध्यान दीजिए, लिखा है जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया। पत्रस हमें प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का स्मरण करवाता है। आपको मालूम है कि इस पृथ्वी पर बहुत से लोग आए, उन्होंने दावा किया कि वे उद्धार करता हैं, परंतु वे मर गए और फिर हमेशा के लिए समाप्त हो गए। आज हम सिर्फ इतिहास की पुस्तकों में पढ़ते हैं, परंतु प्रभु यीशु आया, पापियों के लिए वो मरा और पुनः जी उठा। आगे वह कहता है कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। पहले पत्रस ने अनुग्रह और आशा को साथ रखा था, और अब वह विश्वास और आशा को साथ रखता है। पत्रस आशा का प्रेरित था। यह आशा फिर जी उठे प्रभु यीशु और उस उद्धारकर्ता के पुनः आगमन पर आधारित है। आगे हम देखते हैं, पहला पत्रस एक अध्याय के 22 पद में लिखा है, अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। पत्रस कहता है सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। परमेश्वर का वचन एक चमत्कारी शोधक है। आज अनेक प्रकार के साबुन हैं, परंतु परमेश्वर का वचन चमत्कारी शोधक है। वह दोष दूर करता है, पापों को धो देता है। हम में से अनेकों को इसका उपयोग करने की आवश्यकता है, इसे अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। पत्रस आगे कहता है भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। परमेश्वर के वचन में बने रहने से आपका संबंध अन्य विश्वासियों के साथ सही हो जाता है। आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ना कि बैर। पहला पत्रस एक अध्याय के 23 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। पत्रस हमें परमेश्वर के वचन पर फिर से ले आता है। अब वह उद्धार में परमेश्वर के अपने दृष्टिकोण पर आधारित कार्य की चर्चा करता है। हम देख चुके हैं कि परमेश्वर का वास्तविक कार्य क्या था। प्रभु यीशु का मरना जो हमारे उद्धार का कारक है। यह 2012 वर्ष पूर्व का कार्य है जिसमें हम कुछ और नहीं जोड़ सकते हैं। अब यदि आपको परमेश्वर की संतान बनना है तो आपको नया जन्म लेना होगा, स्वर्गीय जीवन का जन्म, आत्मिक जीवन का जन्म। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 3 पद में प्रभु यीशु ने निकोदेमुस से कहा था कि उसे आत्मा के द्वारा नया जन्म लेना आवश्यक है, जबकि वह एक धार्मिक जन था, धर्म के ज्ञान की बातों को रखता था। इसी प्रकार हम में से प्रत्येक मनुष्य के लिए जो इस पृथ्वी पर हैं, हर एक को आत्मा के द्वारा नया जन्म लेना आवश्यक है, क्योंकि प्रभु यीशु कहता है जब तक मनुष्य नए सिरे से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। आपके कलीसिया में आने जाने से, रीति विधि पूरा करने से कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है जब तक कि उसका नया जन्म का अनुभव ना हो। पत्रस आगे कहता है, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन के बिना ना तो उद्धार पा सकते हैं और न ही नया जन्म पा सकते हैं। यह पुस्तक संसार का एक चमत्कार है। मुझे लगातार पत्र मिलते रहते हैं जिनमें हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे रेडियो कार्यक्रम के द्वारा उन्होंने नया जन्म पाया है और उनका जीवन बदल गया है। मैं आश्चर्य करता हूं कि यह कैसे हुआ, परंतु यह परमेश्वर के जीवन और सदा ठहरने वाले वचन के फल स्वरूप है। मेरे प्रियो, इस समय आप जो वचन सुन रहे हैं, आपने यदि नया जन्म का अनुभव नहीं किया है तो परमेश्वर आपके जीवन में भी इस वचन के द्वारा कार्य करेगा। आज शारीरिक शक्ति पर बहुत ध्यान दिया जाता है, परंतु मैं कहता हूं कि आपको यदि शौर्य चाहिए तो परमेश्वर के वचन का मनन करें। वह जीवन से भरा है और जीवनदायक भी है। अपने उद्धारकर्ता के गले में बाहें डालें और उस पर विश्वास करें तो आपका नया जन्म होगा, आपका चमत्कारी जन्म होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन शक्तिशाली और ओजस्वी है। वह आपके हृदय में प्रवेश करके आपको परमेश्वर की संतान बनाएगा, आपके उस पुराने स्वभाव को बदलकर नए स्वभाव में ले आएगा, और यही कारण है कि वह आपके पापों को क्षमा करके नया व्यक्ति बना देगा। मेरे मित्रों, यह कैसा महत्वपूर्ण है। मनुष्य यौन और शौर्य से ऐसा उलझा हुआ है कि इससे चूक जाता है कि उसे परमेश्वर की ओर आना है। वे निस्सारता के पीछे भाग रहे हैं, शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि संपूर्ण मानव जाति इसकी दीवानी है। आप सोचेंगे कि इस पीढ़ी ने यौन की खोज कर ली है। काश वे खोज पाए कि केवल वचन ही जीवन लाता है, क्योंकि वह प्रभु यीशु को प्रकट करता है और हम में एक महान घटना घटती है, हमारा नया जन्म होता है। पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 24 पद में आगे लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। मेरे प्रियो, कभी ना सोचे कि हम में कुछ मूल्यवान है और हम परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं। मनुष्य की महिमा घास के फूल के समान है, वह हरी दिखती है परंतु शीघ्र ही सूख जाती है। तब आगे पत्रस कहता है, पहला पत्रस की पत्री 1 अध्याय उसके 25 पद में, जो इस अध्याय का अंतिम पद है, लिखा है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। मेरे मित्रों, हमें सबसे बढ़कर परमेश्वर के वचन की शिक्षा ग्रहण करना है। मैं संगीत विधियों और व्यवस्था का मान नहीं घटा रहा हूं, परंतु परमेश्वर के वचन के स्थान पर अन्य कुछ नहीं आ सकता। परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। परमेश्वर का वचन आज भी हृदय को छूता है और कायल करता है। परमेश्वर का वचन आज भी कार्य करता है। मेरे प्रियो, जिस कार्य को आप नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर का वचन करता है। क्या आज आप परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं? क्या आज आप परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन मनन के लिए पढ़ते हैं, उसमें से सीखते हैं, या सिर्फ आप उसे अपने घर पर रखते हैं? आज जब मैं कई बार लोगों के घरों में जाता हूं, तो मैं देखता हूं कि उनके पास में परमेश्वर का वचन है और सेल्फ में सजा करके रखा हुआ है। जब मैं उनसे पूछता हूं, क्या आप इसमें से, परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं, तो उनका कहना है कि हमारे पास में समय नहीं है। मेरे प्रियो, आज वो समय है कि परमेश्वर के वचन को सीख लें। परमेश्वर के वचन में वो खजाना है, वो जीवन है, वो आनंद है, वो शांति है, जो आपको कहीं नहीं मिल सकती। क्या आज भी आप उसे तिजोरी में रख करके, छुपा करके रखना चाहते हैं? रखने की जगह वहां नहीं है, परंतु आपका हृदय है, ताकि आप उस वचन को पढ़ अपने जीवन में शांति को पा सकें। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में बहुमूल्य वचन की सामर्थ को, उद्धार की बातों को, नया जन्म की बातों को सीखा है, और अपने जीवन में आप अवश्य ही लागू करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
Stop.